ये आलसियों का सिद्धांत है। आलसी नहीं, मूर्खों का कही, जिनको भगवान के श्री विग्रह का पता ही नहीं, अंग का, कि कितने सुंदर हैं, कितने महान हैं, जिनको पता नहीं है, तो उनके लिए बस एक ही रास्ता है, निराकार निराकार निराकार। तो एक व्यक्ति भगवान को अपने प्रिय मान रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, और दूसरा कह रहा है कि भगवान निराकार। तो इन दोनों के साथ भगवान एक ही व्यवहार करेंगे, बताइए? एक ही व्यवहार तो करेंगे नहीं। कोई कृष्ण को अपना शत्रु मान रहा है, कोई मित्र मान रहा है, कोई अपना पति मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है, तो विषमता इधर से है ना। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यह, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से प्रतिदान करता हूं। भगवान विषम नहीं है, भगवान बिल्कुल सम है, यह भगवान की विशेषता है। कुंती महारानी इस बात को समझती, और भी अवतारों में भगवान अद्भुत लीला करते, जैसे विविध अवतार ग्रहण करते हैं भगवान, पशुओं में, पक्षियों में, और मनुष्यों में, ऋषियों में, देवताओं में, विविध अवतार लेते रहते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मन त्रियंग नृ ऋषिशु जादहसु तद अत्यंत विडम्बनम। महारानी कुंती कहते हैं कि आप जब जब अवतार लेते हैं, हे विश्वात्मा, आप मनुष्यों में, देवताओं में, पशुओं में, ऋषियों में और देवताओं में अवतार लेते हैं, तो अवतार लेकर के आप ऐसी लीला करते हैं, वो बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे कहती हैं त्रियंग। त्रियंग का अर्थ होता है जो तिरछा, ऐसे जिनका शरीर होता है, पशु और पक्षी दो का शरीर ऐसा होता है, उसको त्रियंग कहते हैं। देखें ना, चार पैर पर खड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं त्रियंग। मनुष्य ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन पशु ऐसे रहते हैं। तो त्रियंग में भगवान का अवतार हुआ, जैसे वाराह देव पशुओं में वाराह देव का अवतार। भगवान शूकर का आकार ग्रहण किए, जबकि वह आकार पूर्ण तो सच्चिदानंद घन है, परंतु जब वाराह बने तो ठीक वाराह जैसे चेष्टा करता है वैसे चेष्टा कर रहे थे। वे सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे, पृथ्वी कहाँ है कहाँ है, इस तरह की चेष्टा भगवान कर रहे थे। उनकी बड़ी सुंदर तेजस्वी आंखें थी, दिव्य श्री विग्रह चमक रहा था, लेकिन पृथ्वी की खोज कर रहे थे। सूकर कहते हैं, सु सु करोति इति सूकर, जो सु सु करे उसको सूकर कहते हैं। तो भगवान बिल्कुल सूकर जैसा व्यवहार कर रहे थे, वैसे ही लंबे लंबे दांत थे भगवान के, और ऐसे मुख लंबा, और पृथ्वी को खोज रहे थे। सर्वज्ञ भगवान पृथ्वी का अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे थे। फिर भी ब्रह्मा आदि देवता और जन लोक के निवासी ऋषिगण भगवान को समझ गए, और वे लोग स्तुति कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे भगवान के। कुंती महारानी कहते हैं कि जब आप सूकर बने थे तो अद्भुत लीला कर रहे थे, उधर से जा करके पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर भगवान आ रहे थे जल से, तो इधर से हिरण्याक्ष पहुंचा। हिरण्याक्ष को पता हो गया था कि विष्णु पशु का रूप बना करके पृथ्वी का हरण करने गया है, तो देखा कि पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, तो हिरण्याक्ष कहा, अरे चोर कहीं के, ये ब्रह्मा जी ने पृथ्वी हम रसातल वासियों को दिया है, झूठ बोला, वो तो चुरा करके रखा था पृथ्वी को। तो कहता है पृथ्वी को छोड़ो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, जल्दी रखो जल्दी रखो। लेकिन भगवान देखे कि पृथ्वी डर रही है, तो वे आए ऊपर और पृथ्वी को स्थापित करके इसके बाद कहे, हम आप इतने बलवान हैं कि हम आपके भय से भाग भी कहां सकते हैं, इसलिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान युद्ध किए, हिरण्याक्ष का वध किए। लेकिन भगवान की अद्भुत लीला है, इसी तरह से एक बार पक्षी अवतार लिए हंस स्वरूप, बिल्कुल हंस जैसा उड़ना बोलना ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक बार भगवान ने देवताओं में अवतार लिया वामन देव के रूप में, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अपने भाई इंद्र के लिए भगवान बेचैन है और इंद्र के लिए बलि महाराज के पास भिक्षुक बनकर गए और खूब बातें बना रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, जैसे याचक दाता की प्रशंसा करता है वैसे खूब बलि की प्रशंसा कर रहे थे और मांगे। तो ये अद्भुत लीला है, लक्ष्मीपति भगवान जगत के ईश्वर और जाकर एक असुर से दैत्य से हाथ जोड़ करके भूमि मांगे, और कितनी भूमि, 3 पग भूमि, और अपना पैर दिखाकर बोल रहे थे, छोटा सा भगवान और कहते हमारे पैर से 3 पग भूमि चाहिए। लगता है कि जैसे भगवान कितने लालायित है भूमि के लिए, सारा विश्व कृष्ण का है, भगवान का है, फिर भी वे एक भिक्षुक की लीला कर रहे थे। इसी तरह से जब मछली का अवतार लिए, मत्स्य अवतार, तो प्रियव्रत महाराज स्नान कर रहे थे कृतमाला नदी में, और स्नान करते समय ऐसे जल दे रहे थे भगवान को, तब तक उनके अंजलि में एक मत्स्य आया, छोटा सा बच्चा मछली का, और जल के साथ ही जब प्रियव्रत महाराज सत्यव्रत महाराज ऐसे पानी में उसको छोड़ दिए, तो वह मत्स्य मनुष्य की भाषा में बोला, देखिए भगवान की लीला, वो भगवान थे, और मत्स्य कहता है महाराज क्या आपको पता नहीं है कि जल में रहने वाले बड़े बड़े जलचर जीव छोटे जीव को खा जाते हैं, मुझको दूसरे लोग खा जाएंगे, आप दयालु राजर्षि हैं, आप मुझको जल में मत छोड़िए। इतना सुनते ही राजर्षि सत्यव्रत को दया आ गई, जो इस समय हम लोगों के मनु महाराज, दया आ गई, तो वे उठा लिए मत्स्य को और उठा करके अपने जलपात्र में रखे, कमंडल जो लेकर के आए थे नहाने के लिए, उसमें रखे, घर लेकर के आए, तो आते आते वो मत्स्य बढ़ गया पूरा और कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो फिर उसने कहा मनुष्य की भाषा में दीन स्वर से, महाराज यह जलपात्र मेरे लिए कम पड़ रहा है, कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो महाराज सत्यव्रत देखिए तो अद्भुत मत्स्य है, इतना जल्दी बढ़ गया। तो वे अपने भवन के एक छोटे से हौदे में उसको रखवा दिए, तो उसमें भी एक दो घंटे में बढ़ गया, तो फिर कहता है यह मेरे लिए कम है। तब वे अपने भवन के पुष्करिणी में छोटे से सरोवर में डलवाए, तो रात भर में वह इतना बढ़ गया मत्स्य कि सरोवर छोटा पड़ गया उसके लिए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ सत्यव्रत महाराज को, और प्रत्येक बार वो मत्स्य कहता था महाराज मेरे लिए जलाशय छोटा है, कोई दूसरा उपाय कीजिए। तब सत्यव्रत महाराज उसे उठा करके एक नदी में डलवाए, जब नदी में पड़ा तो कुछ ही देर में बढ़ करके फिर कहने लगा महाराज मेरे लिए बहुत कम पड़ रहा है। तब अंत में उस मत्स्य को उठवा कर वे समुद्र में डलवाए, तो समुद्र में जिसमें डाला गया उसमें भगवान कहे हंस करके कि महाराज आज से 7वें दिन विश्व का प्रलय हो जाएगा, सारा जगत जल से भर जाएगा, उस समय आप घबराइएगा मत, 70 ऋषियों के साथ आप एक नौका पर चढ़ जाइएगा, अपने आप एक नौका आपके पास आएगी, एक नौका आएगी, आप चढ़ जाइएगा, सृष्टि का सारा बीज लेकर के आप बैठिएगा, और उस समय मैं आऊंगा मत्स्य के रूप में, मैं आऊंगा और वासुकी नाग को मेरे सिंह से बांध करके और नौका के छोर से बांधिएगा, तो जब तक प्रलय निशा रहेगी, प्रलय की रात रहेगी, तब तक मैं उस नौका को खींचते हुए जल में विहार करूंगा। प्रलय पयोधि जले धृतवा नशेदम विहित बहित चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो भगवान उस नौका को खींच रहे थे प्रलय कालीन जल में, और सत्यव्रत महाराज विविध प्रश्न किए हैं। मत्स्य पुराण में बहुत विस्तार से कथा है, वे बहुत प्रश्न करते हैं भगवान से और भगवान उत्तर देते हैं। और पूरा प्रलय कालीन रात्रि में विहार करते रहे, प्रबल तरंगे उठ रही थी समुद्र में, भयावह अंधकार था, लहरें थी, जीव जंतु, लेकिन नौका को भगवान खींच रहे थे। तो सत्यव्रत महाराज बहुत आनंद में थे भगवान के साथ। तो जब ये मत्स्यदेव सत्यव्रत महाराज से इस प्रकार दीन वचन कह रहे थे शुरू में, उसको कुंती महारानी कहती है तद अत्यंत विदम्बनम। तो अद्भुत बात लगती है कि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान और किसी मनुष्य से याचना करें कि हमारे लिए कोई दूसरा जलाशय जोहिए, हमारे लिए ये कीजिए, अद्भुत। और जब मनुष्यों में आप श्री राम के रूप में अवतार लिए थे तो वन वन में भटक रहे थे, बड़े बड़े ऋषियों को भी शंका हो जाती थी क्या यही भगवान है। और उस समय शंका बहुत हो गई लोगों की जब भगवान सीता जी की खोज कर रहे थे एक अज्ञ व्यक्ति की तरह। सीता जी को रावण चुरा लिया तो भगवान खोज रहे थे पत्थर में, गुफा में, वृक्ष के कुंजों में और इधर उधर नदी के तट पर जा जा करके खोज रहे थे। यद्यपि ये लीला भगवान ने स्वयं रचा था, भगवान ने सीता जी से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब रुचिर नर लीला, हे सुंदर शील वाली प्रिय, मैं कुछ सुंदर नर लीला करना चाहता हूँ। तुम पावक मह करहु निवास, जब लग करो निशाचर नाश, तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लेता हूं। तो सीता जी अपना एक नकली रूप छोड़कर और भगवान के चरणों का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश कर गई, और बाहर बिल्कुल कपट सीता छोड़ गई, माया सीता उसको कहते हैं, देखने में बिल्कुल सीता जैसा आकार बोले सब कुछ, असली सीता नहीं थी। तब मारीच आया हरिण के रूप में, वो निकट घास चर रहा था, बहुत तरीके से देख रहा था, रावण ने भेजा था उसको कि जाकर सीता को लुभाओ। तो सीता जी ने देखा, ये तो लीला करनी ही थी भगवान को, तो सीता जी ने देखा हरिण को तो कहती हैं, हे प्रियतम, यह जो मृग है कितना सुंदर है और इसका जो चाम है वो गोल्ड का है, वो सोने का है, तो हम लोग वनवास में इतने दुख भोग रहे हैं, इसका अगर चाम आ जाएगा, इसका स्किन आ जाएगा तो इसको बेच करके और हम लोगों को बहुत पैसा मिलेगा, या इसका हम लोग आसन बनाएंगे, किसी ऋषि को देंगे मृगचर में, आप इसको लाइए लाइए। तो भगवान अपनी प्रिया को इतना मानते थे कि वे नकार नहीं सके। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये राक्षस कोई है, मृग नहीं है, तुम हट मत करो, लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप जाइए और लाइए लाइए। तो भगवान जाते समय लक्ष्मण जी को विशेष रूप से सावधान किए कि मैं जा रहा हूं और इस वन में बड़े मायावी राक्षस घूमते रहते हैं, तुम सीता की रक्षा करना है, यहीं रहना है। लक्ष्मण जी कहे ठीक है, वो तैयार हो गए और भगवान गए मृग के पीछे। तो भगवान भी जानते हैं कि यह मायावी राक्षस है और उनको इधर उधर ले गया ले गया ले गया, घुमा फिरा करके अंत में निकट में ही भगवान ने उसको बाण मारा। बाण मारा तो वो पुकारा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मैं विपत्ति में हूं, आओ आओ। भगवान राम के स्वर का नकल किया वो मारीच। तो यहां पर सीता जी सुनी, सीता जी सुनी तो कहते हैं, लक्ष्मण सुन रहे हो, ये तुम्हारे भाई की आवाज है, वो बहुत बड़े संकट में पड़ गए हैं, जल्दी जाओ जाओ जाओ, उनकी सहायता करो सहायता करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान श्री राम पर विपत्ति आ ही नहीं सकती है, अरे वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ये तो लीला सब करनी थी भगवान को। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, वे बिल्कुल ठीक हैं, ये किसी राक्षस की बनावटी आवाज होगी उनके कंठ स्वर में, आप चिंता मत कीजिए। इतना सुनते ही सीता जी बिल्कुल गर्म हो गई, मैं कहती हूं कि तुम जाओ उनकी सहायता करो और तुम कहते हो कि कोई विपद नहीं आ सकती है, ये आवाज सुनो तो ध्यान से किसकी आवाज है। लक्ष्मण जी कहे कि इस तरह की नकल राक्षस लोग करते हैं, यह राम की आवाज नहीं है। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा कि तुम्हारे दुष्ट अभिप्राय की कलई आज खुल गई, मैं समझ गई कि तुम क्यों हम लोगों के साथ अयोध्या से आए हो, मैं समझ गई तुम चाहते हो कि राम मर जाए और इसके बाद तुम सीता को रख लो। और इतना सुनते ही लक्ष्मण जी कान बंद कर लिए, क्या हो गया इनको। बहुत दुर्वचन सीता जी बोली लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता जी मैं इसीलिए क्षमा कर रहा हूं कि आप स्त्री हैं, मैं ऐसी बात सुन नहीं सकता था किसी पुरुष के मुख से, आप स्त्री हैं, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, आप ऐसे कठोर वचन बोल रही, ठीक है मैं जा रहा हूं लेकिन मैं आपकी सुरक्षा का उपाय बताता हूं। इन्होंने एक रक्षा रेखा खींचा और कहा कि इस रेखा के बाहर आप मत आइएगा। कहा ठीक है, लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले गए। जब गए तो भगवान उधर से मृग चर्म ले करके, हरिण का चर्म हाथ में ले करके और आ रहे थे। लक्ष्मण जी को जब उन्होंने देखा तो सीधा भगवान ने ये पूछा, लक्ष्मण तुम क्यों इधर आ गए सीता को छोड़कर। तो लक्ष्मण जी कहे कि मैं नहीं आ रहा था लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, सीता जी यह बोली वह बोली। भगवान कहते हैं तुम नहीं जानते हो कि स्त्रियों को कम बुद्धि होती है, अगर वो कुछ बोल भी दी तो तुम क्यों आ गए, तुमको सहन करना चाहिए ना, तुम तो उससे भी कम बुद्धि के निकले। जब भगवान कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, तुम थोड़ा सा वचन नहीं सह सकते हो। अरे अब कितना सहे लक्ष्मण जी बताइए। तो उधर से वो वाइफ बोल रही थी तो इधर से हस्बैंड बोल रहा है, बीच में स्त्री पुरुष के बीच के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये नीति है। और उधर से वो डांट करके भगाई और इधर से भगवान लगे कहने के ऐसे क्यों किया क्यों किया। तो भगवान वहीं पर बिल्कुल खिन्न हो गए, कहने लगे तुम इधर आ गए, निश्चित ही कोई राक्षस सीता को खा गया होगा या हर कर ले गया होगा।